भाषा विज्ञान का अन्य शास्त्रों से संबंध। भाषा विज्ञान में भाषा या भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है और भाषा जीवन का प्रमुख अंग है, क्योंकि भाषा के बिना जीवन और जगत का कोई कार्य नहीं चलता। भाषा मानव जीवन की समस्त गतिविधियों का मूलाधार होती है। भाषा से ही हम परस्पर एक दूसरे के विचारों से अवगत होती हैं, अपनी इच्छा व अभिलाषा व्यक्त करते हैं और लोक व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं तथा दूसरों को प्रवृत्त होने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। भाषा ही हमें ज्ञान विज्ञान के अनुसंधान में सहायता प्रदान करती है और भाषा से हम प्रगति के पथ पर अग्रसर होकर प्रकृति के विविध रहस्यों का उद्घाटन करने में समर्थ होते हैं। जब भाषा हमारे जीवन, जगत, ज्ञान, विज्ञान आदि के सभी क्षेत्रों में अपना अधिकार रखती है, तब भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले भाषा विज्ञान का संबंध ज्ञान विज्ञान की अन्य शाखाओं एवं ज्ञान विज्ञान के प्रतिपादक विविध शास्त्रों से होना स्वाभाविक है। वैसे भी भाषा विज्ञान ज्ञान विज्ञान की सभी शाखाओं से सहायता प्राप्त करके अपने क्षेत्र में पदार्पण करता है और विविध शास्त्रों से उपयोगी सामग्री लेकर भाषा की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। इसके अतिरिक्त जब कभी शास्त्र अपने ज्ञान विज्ञान द्वारा जीवन और जगत के रहस्यों का अनुसंधान एवं अन्वेषण करते हुए अपने अपने विषयों का प्रतिपादन करते हैं, तब सभी शास्त्रों का पारस्परिक संबंध होना भी अपरिहार्य है। यही कारण है कि विषय प्रतिपादन के प्रमुख साधन भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले भाषा विज्ञान का विविध शास्त्रों से बड़ा ही निकट एवं घनिष्ठ संबंध है। इनमें से कुछ शास्त्रों के संबंध का विवेचन नीचे किया जाता है। पहला, भाषा विज्ञान और व्याकरण। किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग एवं शुद्ध लेखन संबंधी सम्यक ज्ञान प्राप्त करना के लिए उसके व्याकरण का जानना आवश्यक होता है। व्याकरण भाषा का केवल मूलाधार ही नहीं होता, अपितु मेरुदंड भी होता है। वह किसी भाषा का दिग्दर्शक ही नहीं होता, अपितु पथ प्रदर्शक भी होता है। और वह किसी भाषा का बोलना एवं लिखना ही नहीं सिखाता, अपितु वह आलोक स्तंभ भी होता है, जिसके सहारे भाषा के घन अंधकार में भटकता हुआ व्यक्ति उचित मार्ग को प्राप्त करता है। इसीलिए व्याकरण का भाषा विज्ञान से निकट संबंध दिखाई देता है, परंतु व्याकरण एवं भाषा विज्ञान में पर्याप्त अंतर होता है। पहला, व्याकरण एक कला है और भाषा विज्ञान एक विज्ञान है। दूसरे, व्याकरण किसी एक भाषा तक ही सीमित रहता है, जबकि भाषा विज्ञान विविध भाषाओं का भी तुलनात्मक विवेचन करता है। तीसरे, व्याकरण किसी एक भाषा के सिद्ध एवं निष्पक्ष रूपों की ही व्याख्या में मांसा करता है, जबकि भाषा विज्ञान सिद्ध एवं असिद्ध, प्रचलित एवं अप्रचलित तथा शुद्ध एवं अशुद्ध सभी रूपों की मीमांसा एवं विवेचन करता है। चौथे, व्याकरण में केवल संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि रूपों का ही विवेचन किया जाता है, जबकि भाषा विज्ञान में इन भाषा रूपों के अतिरिक्त ध्वनियों, वाक्यों, अर्थों आदि का भी अध्ययन किया जाता है। पांचवें, व्याकरण तो केवल इतना ही बता सकता है कि आग शब्द संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है आदि आदि, परंतु भाषा विज्ञान यह भी बताता है कि यह किस तरह अपने मूल रूप अग्नि से विकृत होकर पहले अग्नि बना और कालांतर में अग्नि से आग हो गया। छठे, व्याकरण सदैव एक निश्चित काल तक सीमित रहता है, जबकि भाषा विज्ञान का क्षेत्र असीम तथा अनंत है। सातवें, व्याकरण केवल नियमों के आधार पर भाषा की विवेचना करता है, जबकि भाषा विज्ञान भाषा के अनुशीलन के आधार पर नियमों का निर्धारण करता है। आठवें, व्याकरण एक स्थितियात्मक ज्ञान विद्या है, जबकि भाषा विज्ञान एक गत्यात्मक ज्ञान का भंडार है। नवें, व्याकरण भाषा की दार्शनिक व्याख्या करता है, जबकि भाषा विज्ञान भाषा का वर्गीकरण एवं विश्लेषण करके उसकी वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। दसवें, व्याकरण केवल नियम, उपनियम एवं अपवादों की ही विस्तार सहित व्याख्या करता है, जबकि भाषा विज्ञान भाषा के ऐतिहासिक और तुलनात्मक व्याख्या करता हुआ प्रत्येक शब्द के क्रमिक विकास का इतिहास भी प्रस्तुत करता है। इतना अंतर होते हुए भी व्याकरण भाषा विज्ञान के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है, क्योंकि व्याकरण दो प्रकार का होता है, वर्णनात्मक और व्याख्यात्मक। वर्णनात्मक व्याकरण किसी भाषा के शब्द रूपों का प्रकृति प्रत्यय के आधार पर वर्गीकरण एवं विश्लेषण करता हुआ विविध नियमों का निर्धारण करता है। जैसे पाणिनिकृत अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा का श्रेष्ठ वर्णनात्मक व्याकरण है। व्याख्यात्मक व्याकरण में किसी भाषा की दार्शनिक व्याख्या की जाती है। जैसे महर्षि पतंजलि कृत महाभाष्य संस्कृत भाषा का सर्वोत्कृष्ट व्याख्यात्मक व्याकरण है। उक्त दोनों व्याकरणों में वर्णनात्मक व्याकरण भाषा विज्ञान का अत्यंत उपस्कारक एवं उपादेय होता है, क्योंकि उसके ऐतिहासिक तुलनात्मक एवं सामान्य विवेचन को आधार बनाकर ही भाषा विज्ञान अपने अनुसंधान की दिशा में प्रवृत्त होता है और यह पता लगाता है कि अमुक शब्द का मूल रूप क्या था, किन किन परिस्थितियों में उसमें विकार उत्पन्न हुआ और किस तरह वह आगे पुनः विकसित होता हुआ वर्तमान रूप को प्राप्त हुआ है। व्याकरण ही भाषा विज्ञान को विविध ध्वनियों रूपों एवं वाक्यों से परिचित कराता है। व्याकरण ही भाषा की प्रवृत्ति एवं उसके प्रयोगों से भाषा विज्ञान को अवगत कराता है और व्याकरण ही भाषा विज्ञान को यह बताता है कि अमुक भाषा में कितनी ध्वनियाँ प्रचलित हैं, कितने वर्णों का प्रयोग होता है, उनके उच्चारण की विधि क्या है, उनमें से कौन सी सार्थक ध्वनियाँ हैं और कौन सी ध्वनियाँ निरर्थक हैं, शब्दों के वर्तमान रूप कौन से हैं तथा उनके प्रयोगों से क्या विशेषता है। इस प्रकार भाषा विज्ञान को अपना कार्य संपादन करने के लिए सर्वाधिक कच्चा माल व्याकरण ही प्रस्तुत करता है, साथ ही भाषा विज्ञान को अन्वेषण की दिशा प्रदान करता है। व्याकरण के सिद्ध एवं निष्पन्न रूपों का मूल उद्गम एवं विकास का इतिहास बताने के कारण तथा व्याकरण द्वारा प्रस्तुत सामग्री का वैज्ञानिक विवेचन करने के कारण भाषा विज्ञान व्याकरण का भी व्याकरण कहलाता है। इसके अतिरिक्त भाषा विज्ञान को ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान, शब्द विज्ञान और अर्थ विज्ञान संबंधी सर्वाधिक सामग्री व्याकरण से ही प्राप्त होती है। यही कारण है कि भाषा विज्ञान और व्याकरण का घनिष्ठ संबंध है। दूसरा, भाषा विज्ञान और साहित्य। साहित्य में भाषाओं के स्थायी रूप संचित रहते हैं और साहित्य का अध्ययन किए बिना किसी भाषा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। अतएव भाषाओं के क्रमिक विकास का अध्ययन करने के लिए भाषा विज्ञान को साहित्य का सहारा लेना पड़ता है। साहित्य ही यह बता सकता है कि प्राचीन वैदिक भाषा का स्वरूप क्या था, क्योंकि ऋग्वेद में उस भाषा का स्वरूप आज तक सुरक्षित मिलता है। साहित्य ही यह बता सकता है कि वैदिक भाषा को किस तरह व्याकरण के नियमों से शुद्ध एवं परिष्कृत करके उसके संस्कृत रूप का विकास हुआ, क्योंकि वैदिक भाषा के उत्तरकाल में लिखित महाभारत, रामायण आदि संस्कृत के महाकाव्यों में वह रूप विद्यमान है। साहित्य से ही यह बोध होता है कि किस तरह व्याकरण के नियमों से मुक्त कोई दूसरी भाषा भी जनसाधारण में उस समय प्रचलित थी जिस समय वैदिक भाषा का संस्कार एवं परिष्कार हो रहा था, क्योंकि प्राकृत एवं पाली भाषा का साहित्य उस भाषा को आज तक संजय हुए है। साहित्य से ही प्राकृत भाषा के विकसित एवं अभ्रंश भाषा का ठीक ठीक बोध होता है, क्योंकि अभ्रंश भाषा का प्रचुर साहित्य उस सामग्री को अपने भंडार में सुरक्षित लिए हुए आज भी विद्यमान है। इतना ही नहीं, साहित्य से ही आज भाषा विज्ञान को यह ज्ञान होता है कि किस तरह अभ्रंश भाषा के उपरांत हिंदी के प्राचीन रूपों का विकास हुआ, किस तरह खड़ी बोली, ब्रज, अवधि, भोजपुरी, बघेली, बांगरू आदि बोलियों का प्रादुर्भाव हुआ और किस तरह खड़ी बोली उत्तरोत्तर विकसित होती हुई आज एक परिनिष्ठित भाषा के रूप में प्रचलित है, क्योंकि इन सभी बोलियों एवं विभाषाओं का साहित्य उपलब्ध है जो भाषाओं के क्रमिक ऐतिहासिक विकास के अध्ययन हेतु प्रचुर सामग्री प्रस्तुत करता है। सच पूछा जाए तो साहित्य ने ही भाषा विज्ञान के अध्ययन को जन्म दिया है, क्योंकि जिस समय पाश्चात्य विद्वानों ने संस्कृत के वारेण्य वांग्मय का अध्ययन किया और उनके रूपों की तुलना ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी आदि भाषाओं से की, तभी से भाषा विज्ञान का विकास हुआ है। अतः साहित्य भाषा विज्ञान का जनक है। साहित्य केवल अपने ऐतिहासिक विकास द्वारा भाषा विज्ञान के अध्ययन में सहायक नहीं होता, अपितु भाषा विज्ञान के तुलनात्मक अध्ययन के लिए भी पर्याप्त उपयोगी सामग्री प्रदान करता है। यह साहित्य की ही कृपा है कि आज भाषाओं के पारिवारिक विकास के अध्ययन का कार्य भाषा विज्ञान कर सका है, क्योंकि भाषा विज्ञान को साहित्य में ही वह सामग्री स्थायी रूप से मिल सकती है जिसके आधार पर वह तुलना करता है, वह किसी एक भाषा परिवार को निश्चित करता है। लैटिन, ग्रीक, संस्कृत, जर्मन, ईरानी, अवेस्ता आदि भाषाओं का मूल स्रोत एक है और ये सभी एक परिवार की भाषाएं हैं। यह पता इनके प्राचीन साहित्य के अध्ययन का ही परिणाम है। यदि इनका प्राचीन साहित्य संचित न होता तो इनके परिवार का भी पता न चलता। जिन भाषाओं का प्राचीन साहित्य आज लुप्त हो गया है अथवा नष्ट हो गया है, उनका तुलनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन करना आज भाषा विज्ञान के लिए सर्वथा असंभव है। ऋग्वेद से पहले यहाँ कौन सी भाषा प्रचलित थी, आज ऋग्वेद से पूर्व का साहित्य उपलब्ध न होने के कारण कुछ पता नहीं चलता। आज वैदिक भाषा, संस्कृत, प्राकृत, पाली, अभ्रंश आदि का अध्ययन सुगमता से इसलिए हो सकता है क्योंकि इनका साहित्य उपलब्ध है और उसमें भाषा विकास के सभी सोपान विद्यमान हैं। अतएव भाषा विज्ञान को तुलनात्मक अध्ययन के लिए प्रचुर सामग्री उपलब्ध कराने का कार्य साहित्य ही करता है। साहित्य से ही भाषा विज्ञान को ध्वनियों के परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त सामग्री प्राप्त होती है क्योंकि साहित्य में ही किसी भाषा के ध्वनियों के विविध रूप संचित रहते हैं। साहित्य ही यह बता सकता है कि वैदिक काल में कितनी ध्वनियाँ प्रचलित थी, प्राकृत काल में आकर उनमें क्या क्या परिवर्तन हुए, अपभ्रंश काल में आकर वे पुनः किस तरह परिवर्तित हुए और आधुनिक युग में आकर उनके अंतर्गत कैसे कैसे परिवर्तन हुए हैं। साहित्य से ही रूप परिवर्तनों का क्रमिक इतिहास ज्ञात होता है क्योंकि साहित्य में ही किसी भाषा के प्राचीन एवं अर्वाचीन रूप विद्यमान रहते हैं। आज आर्य भाषा के विविध रूपों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भाषा विज्ञान को वैदिक साहित्य से लेकर प्राकृत, अभ्रंश, ब्रज, अवधि, मैथिली आदि विविध भाषाओं के साहित्य में व्यवहित शब्दावली का अध्ययन करना पड़ता है। ऐसे ही अर्थ परिवर्तन की विविध दशाओं का सम्यक अध्ययन करने के लिए भी भाषा विज्ञान को साहित्य का ही सहारा लेना पड़ता है क्योंकि साहित्य ही उसे यह बता सकता है कि किस तरह असुर शब्द जो पहले देवता का वाचक था धीरे धीरे राक्षस का वाचक हो गया, साहसिक शब्द जो पहले डाकू का वाचक था धीरे धीरे हिम्मत वाले वीर पुरुष का द्योतक हो गया, स्वर्गवास जो पहले देवों के निवास का द्योतक था धीरे धीरे मृत्यु का वाचक हो गया आदि आदि। इस प्रकार भाषाओं के क्रमिक विकास का इतिहास ही नहीं ध्वनि रूप एवं अर्थ संबंधी अध्ययन के लिए प्रचुर सामग्री जुटाने का कार्य साहित्य ही करता है। इसके साथ ही प्राचीन साहित्य का बोध कराने में भाषा विज्ञान भी साहित्य के लिए अत्यंत उपयोगी होता है क्योंकि भाषा विज्ञान के द्वारा ही एक साहित्य का विद्यार्थी किसी भाषा के अर्थ परिवर्तन का ज्ञान प्राप्त करता है, विविध भाषाओं के शब्दों से भी परिचित हो जाता है और प्राचीन भाषाओं के विविध रूपों को भली भांति समझ सकता है। यही कारण है कि भाषा विज्ञान और साहित्य में घनिष्ठ संबंध है। तीसरा, भाषा विज्ञान और इतिहास। विविध राष्ट्रों के उत्थान पतन संबंधी तथ्यपूर्ण विवरण को इतिहास कहते हैं। इतिहास में जातियों के सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक हलचलों का उल्लेख होता है। इसीलिए इतिहास को तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं, सामाजिक इतिहास, धार्मिक इतिहास और राजनीतिक इतिहास। सामाजिक इतिहास में विविध जातियों की सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक मान्यता, रीति नीति, सामाजिक विश्वास, रूढ़ियाँ एवं परंपराएं, जाति भेद, वर्ग भेद, आचार विचार, सामाजिक मूल्य आदि का पता चलता है। भाषा भी एक सामाजिक वस्तु है और प्रत्येक समाज की अपनी एक प्रमुख भाषा होती है जो अन्य समाज के संपर्क में आने पर कुछ शब्द उन समाजों के ग्रहण कर लेती है तथा कुछ शब्दों में वे समाज परिवर्तन कर डालते हैं। इन सामाजिक सम्मिश्रणों से प्रायः ध्वनि परिवर्तन बड़ी तीव्र गति से हुआ करते हैं। भाषा विज्ञान को ध्वनि परिवर्तन संबंधी ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसी कारण सामाजिक इतिहास का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि भारत का सामाजिक इतिहास यह बता सकता है कि किस तरह अमीरों ने यहाँ आकर यहाँ की आर्य भाषा को परिवर्तित कर दिया और वह संस्कृत के शुद्ध रूप का परित्याग करके शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, लाटी, पैशाची आदि प्राकृतों के रूप में परिणत हो गई और कैसे फिर वह विविध अभ्रंशों का रूप ग्रहण करके वर्तमान लोक भाषाओं के रूप में परिवर्तित हो गई। इस प्रकार भाषा परिवर्तन के साथ साथ विविध ध्वनि परिवर्तनों, रूप परिवर्तनों एवं अर्थ परिवर्तनों का क्रमिक इतिहास जानने के लिए भाषा विज्ञान को सामाजिक इतिहास का आश्रय लेना पड़ता है। ऐसे ही धार्मिक इतिहास में विविध धर्मों के उद्भव और विकास का विवरण मिलता है। इससे यह भी पता चलता है कि किस तरह किसी धर्म की प्रमुख भाषा अन्य धर्मावलंबियों की भाषा को प्रभावित किया करती है, क्योंकि जब किसी एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म वालों पर अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं, तब विजयी धर्म की भाषा सदैव पराजित धर्म की भाषा को विकृत एवं परिवर्तित कर डालती है और अपने अनेक शब्दों, अनेक ध्वनियों एवं अनेक प्रयोगों की छाप पराजित धर्म की भाषा पर छोड़ जाती है। जैसे ईरान प्रदेश में पहले वैदिक धर्म का ही बोलबाला था और वहां आर्य भाषा का ही प्रचार था, किंतु ईसा की 7वीं शताब्दी के उपरांत जब इस्लाम धर्म ने ईरान पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली और वहां इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया गया, तभी से ईरान की फारसी भाषा में हजारों अरबी शब्द आ गए। ऐसे ही धार्मिक इतिहास से हमें यह पता चल सकता है कि किस तरह पहले भारत में यज्ञ संबंधी शब्दों का जनजीवन में प्रचार था, क्योंकि यहाँ यज्ञों की बहुलता थी, परंतु आज यज्ञकार का लुप्त हो जाने के कारण भारतीय समाज ही होता, उद्गाता, अर्धवर्यु, ब्रह्मा, यूप, विनियोग, पशु, पुरोडाश, हवि, श्रुवा आदि शब्दों से अपरिचित हो गया है और ये शब्द प्रायः लुप्त होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत का धार्मिक इतिहास यह बता सकता है कि किस तरह मध्यकाल में ब्रजभाषा पूर्व में असम और बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात एवं सिंध तक प्रचलित थी और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक भली प्रकार समझी जाती थी और आज भी असमिया, बंगाली, बिहारी, पंजाबी, सिंधी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं में ब्रजभाषा के हजारों शब्द मिलते हैं। इसी तरह राजनीतिक इतिहास में राष्ट्रों की राजनीतिक गतिविधि का विवरण रहता है। राजनीतिक परिवर्तन सदैव भाषाओं को भी प्रभावित किया करता है, अतः भाषाओं के विकास के इतिहास जानने के लिए भाषा विज्ञान को राजनीतिक इतिहास का भी आश्रय ग्रहण करना पड़ता है, क्योंकि राजनीतिक इतिहास यह अच्छी तरह बता सकता है कि किस तरह कोई राष्ट्र जब दूसरे राष्ट्र पर अपनी प्रभुता स्थापित कर लेता है, तब उस राष्ट्र के भाषाओं में न केवल विजयी राष्ट्र के विविध शब्द गृहित होने लगते हैं, अपितु उस राष्ट्र की भाषाएँ भी पर्याप्त मात्रा में परिवर्तित हो जाती हैं। भाषा के राजनीतिक इतिहास से ही यह पता चलता है कि भारतीय आर्य भाषाओं में किस प्रकार अरबी, फारसी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी, यूनानी आदि शब्दों का समावेश हुआ। ऐसे ही पूर्वी द्वीप समूह हिंद, चीन, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो आदि द्वीपों में संस्कृत भाषा के शब्दों की बहुलता भारतीय उपनिवेश के साथ साथ बृहत्तर भारत के राजनीतिक उत्कर्ष का बोध करा रही है। इस प्रकार जहाँ इतिहास भाषा विज्ञान को ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक अध्ययन में सहायता पहुँचाता है, वहाँ भाषा विज्ञान भी अपने वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा इतिहास को प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, सामाजिक स्थिति आदि के अध्ययन की प्रचुर सामग्री प्रस्तुत कराता है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के अभिलेख, हित्ती के किलाक्षर, विविध प्राचीन शिलालेख आदि भाषा वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा आज विगत इतिहास की टूटी कड़ियों को जोड़ने में बड़ी सहायता मिली है। यही कारण है कि भाषा विज्ञान और इतिहास का घनिष्ठ संबंध है। चौथा, भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान। विविध सामाजिक चेष्टाओं, क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने वाले शास्त्र को मनोविज्ञान कहते हैं और भाषा का संबंध मानव की शारीरिक क्रियाओं से नहीं अपितु मानसिक क्रियाओं से होता है। इस मानसिक क्रियाओं का उद्गम स्थल मस्तिष्क होता है, क्योंकि मन का निवास स्थान मस्तिष्क ही है और जब मस्तिष्क विकृत हो जाता है या नष्ट हो जाता है, तब संपूर्ण मानसिक क्रियाएं भी या तो विकृत हो जाती है या पूर्णतया समाप्त हो जाती है। मानसिक क्रियाओं के विकृत होने पर प्रायः भाषा की ध्वनियों में भी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे यदि किसी संपन्न व्यक्ति के घर में अचानक चोर या डाकू आ जाते हैं तो भय के मारे उनकी मानसिक स्थिति अस्त व्यस्त हो जाती है, और ऐसी स्थिति में यदि वह नौकरों से या टेलीफोन पर बात करता है तो कभी वह बंदूक को दम्बूक दम्बूक कहता है और कभी टेलीफोन पर पुलिस को पुसिल पुसिल कहने लगता है। भाषा की इस विकृति का मूल कारण मानसिक स्थिति है। ऐसे ही अशिक्षित एवं अज्ञानी व्यक्ति जिन शब्दों से अधिक परिचित रहते हैं उनका उच्चारण करना उनके लिए सर्वथा सुगम होता है, और यदि वे उन्हीं शब्दों के समकक्ष ध्वनियां सुनते हैं तो झट उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि वे उन अपरिचित ध्वनि शब्द ध्वनियों को भी परिचित शब्द ध्वनियों के समान बोलने लगते हैं। जैसे अशिक्षित व्यक्ति जब लाइब्रेरी शब्द सुनता है तब वह उसे रायबरेली बोलने वाले बोलने लगता है, एडवांस को अठवांस कहने लगता है तथा मैकेंजी को मक्खन जी कहने में सुगम समझता है। इसी तरह अर्थ परिवर्तन में भी मानसिक स्थिति बड़ा कार्य करती है। सच पूछा जाए तो प्रत्येक शब्द और अर्थ की स्थिति का निर्धारण ही बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया का परिणाम है। किसी शब्द से किसी पदार्थ का बोध होता है अथवा कौन सा शब्द किस अर्थ का द्योतक है, इस प्रश्न का उत्तर मस्तिष्क ही देता है, क्योंकि मानसिक प्रक्रिया के सहारे ही शब्द और अर्थ का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसके साथ ही अर्थ परिवर्तन के संपूर्ण कारणों को तो मानसिक स्थिति के आधार पर ही समझा जा सकता है, क्योंकि शौच का अर्थ जैसे टट्टी जाना हो गया है, शीतला की कृपा का अर्थ कैसे चेचक निकलना माना जाता है, पैर भारी होने का अर्थ कैसे गर्भिणी होना स्वीकार किया जाता है, महाजन शब्द का अर्थ कैसे सुदखोर हो गया है, असुर को कैसे राक्षस कहने लगे हैं, इन सभी अर्थ परिवर्तनों का कारण वह मानसिक स्थिति है जिसका सम्यक एवं विस्तृत अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इतना ही नहीं, प्रत्येक भाव एवं विचार का संबंध भी मन से ही होता है और भाषा का संबंध सदैव भाव एवं विचारों से होता है। इस प्रकार प्रत्येक शब्द और अर्थ की मूलाधार मानसिक प्रक्रिया है और इसी मानसिक प्रक्रिया के द्वारा ध्वनि विकार, रूप विकार, अर्थ विकार आदि का अनुशीलन भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। यही कारण है कि मनोविज्ञान और भाषा विज्ञान में परस्पर घनिष्ठ संबंध रखते हैं। पांचवा, भाषा विज्ञान और दर्शन। जीवन और जगत के आध्यात्मिक रहस्यों का उद्घाटन करने वाले शास्त्र का नाम दर्शन है। दर्शन का जहाँ जीवन और जगत में अटूट संबंध है, वहाँ जीवन और जगत के व्यवहार के लिए अत्यंत अनिवार्य साधन स्वरूप भाषा से उसका संबंध होना भी स्वाभाविक है। पाश्चात्य देशों में तो दार्शनिकों ने ही सर्वप्रथम भाषा का विवेचन करके वाणी के रहस्य का उद्घाटन किया था। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने ही सर्वप्रथम अपने एक प्रवचन में शब्द और अर्थ के अटूट संबंध का निरूपण किया था। प्लेटो ने ही यह सिद्ध किया था कि शब्दार्थ का निर्धारण सदैव प्रकृति या स्वभाव से होता है। यद्यपि उसके परवर्ती ग्रीक दार्शनिकों ने इस विचार का समर्थन नहीं किया और इसी कारण अरस्तु आदि दार्शनिकों ने बताया कि सदैव शब्द के अर्थ का निर्धारण परंपरा से होता है। ग्रीक एवं रोमन दार्शनिकों ने सर्वप्रथम भाषा को तीन वर्गों में विभाजित किया था, पदार्थ संज्ञा, गुण यानी विशेषण, और कार्य यानी क्रिया। इन्हीं के आधार पर आगे चलकर व्याकरण का निर्माण हुआ। ऐसे ही आज भारत में भी सर्वप्रथम दार्शनिकों ने वाणी या भाषा को चार भागों में विभक्त किया, परा, पश्यन्ति, मध्यमा और बैखरी। इनमें से परा, पश्यन्ति और मध्यमा को गुहा निहित माना गया है तथा बैखरी वाणी को मानव बोलते हैं। भारतीय दार्शनिकों ने परा वाणी को नाद रूपा शुद्ध अहम परमार्श दत्तमयी शक्ति कहा है। पश्यन्ति को वाच्य और वाचक का स्फुट विभाग करने वाली चैतन्य प्रधान एवं दृष्टा रूप वाली स्वीकार किया है। मध्यमा ही वाच्य और वाचक का विभाग होने पर भी बुद्धि प्रधान दर्शन स्वरूप दृष्टा और दृष्ट के अंतराल में रहने वाली माना है तथा बैखरी को स्थान, करण और प्रयत्न और बल के स्पष्ट होकर वर्ण के उच्चारण शैली को ग्रहण करने वाले दृश्य प्रधान वाणी कहा है। साथ ही भारतीय दर्शन ने यह संकेत किया है कि भाषा का विकास वर्गों में पूर्ण होता है और वर्णों के लिए अभ्यांतर और बाह्य दो प्रयत्न माने गए हैं। अभ्यांतर प्रयत्न वह है जो वर्णों की उत्पत्ति से प्रभावी वायु व्यापार है और वर्णोत्पत्तिकालिक व्यापार को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। साथ ही भारतीय दार्शनिकों ने यह भी सिद्ध किया है कि जो कुछ हम अनुभव करते हैं वाणी या भाषा उसी का बाह्य रूप है। यह वाणी की अभिव्यक्ति और कुछ नहीं मनन एवं चिंतन की प्राणमय क्रिया है अथवा आत्मानुभूति की प्रकट होने की चेष्टा है। इसी तरह भारतीय दार्शनिकों ने तंत्र शास्त्रों में वर्ण मात्रिका का भी सुंदर कल्पना की है और अ से आरंभ होकर ह तक के ज्ञान का है प्रतीक अहम माना है। संपूर्ण अनुभूतियां संपूर्ण ज्ञान अहम या आत्मा के ही माने गए हैं जो वर्णमाला के भीतर से ही प्रकट होते हैं। इतना ही नहीं, व्याकरणों का स्फोटवाद, न्यायिकों का जातिवाद, मीमांसकों का शब्द ब्रह्मवाद, बौद्धों का अपोहवाद आदि सिद्धांत भी भारतीय दर्शन की ही देन है। इस प्रकार भाषा के उद्गम, उच्चारण आदि की दार्शनिक व्याख्या करने के कारण दर्शन और भाषा विज्ञान का भी घनिष्ठ संबंध है। छठा, भाषा विज्ञान और भूगोल। भूमंडल के विविध राजनीतिक एवं प्राकृतिक खंडे एवं विविध प्रकार के जलवायु का बोध कराने वाले शास्त्र को भूगोल कहते हैं। भूगोल से मुख्यतया शीत उष्ण समशीतोष्ण आदि विविध प्रकार के जलवायु का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त होता है। इस जलवायु का प्रभाव सदैव भाषाओं के उच्चारण पर पड़ा करता है, क्योंकि शीत प्रधान देशों में प्रायः दंत ध्वनियाँ त थ द नहीं पाई जाती और उनके स्थान पर भी वर्ष ध्वनियाँ ट ठ ड बोली जाती हैं, क्योंकि उनका वाग यंत्र इतना अधिक नहीं खुल पाता जितना कि उष्ण देशों में सुगमता से खुल जाता है। यही कारण है कि अंग्रेज सदैव देहरादून को डेहराडून कहते हैं, जिससे ध्वनि विकार उत्पन्न होना स्वाभाविक है। वे सदा तूताराम को टोटाराम, मथुरा को मथुरा, दिल्ली को दिल्ली, देवबंद को देवबंद ही कहा करते हैं। ध्वनि परिवर्तनों का ज्ञान भूगोल के द्वारा प्राप्त होता है। ऐसे ही कुछ भाषाएं तो सुगमता से एक विस्तृत क्षेत्र में फैल जाती हैं, जबकि कुछ भाषाएं संकुचित क्षेत्र तक ही सीमित रहती हैं। इसका ज्ञान भी भूगोल से ही उपलब्ध होता है, क्योंकि जिस क्षेत्र में आवागमन के साधन अच्छे होते हैं, जो उर्वरा भूमि संपन्न समृद्ध क्षेत्र होता है तथा जहाँ वन पर्वत आदि नहीं होते, उन क्षेत्रों की भाषाएँ सुगमता से विस्तृत क्षेत्र तक फैल जाती हैं। जबकि पर्वतीय प्रदेश एवं बंजर तथा अविकसित भूभाग ही की भाषा सदैव संकुचित क्षेत्र तक ही सीमित रह जाती है। इसी तरह उपजाऊ एवं उर्वर भूभाग की भाषाएं सदैव विकासशील रहती हैं, जबकि ऊबड़ खाबड़ एवं बंजर प्रदेश की भाषा सदैव अविकसित बनी रहती है, क्योंकि वहाँ अन्य भाषा भाषियों का भी आवागमन नहीं होता। यही कारण है कि स्कैंडिनेविया की भाषा दीर्घकाल से अविकसित बनी हुई है, जबकि गंगा एवं सिंधु के हरे भरे मैदानों की भाषाएं अत्यंत विकासशील रही हैं। भाषा की शब्दावली पर भी भूगोल का प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि जो भूभाग कृषि प्रधान होता है, वहाँ की भाषा में कृषि संबंधित शब्दावली का बाहुल्य देखा जाता है, और जो भूखंड औद्योगिक विकास से परिपूर्ण होता है, वहाँ औद्योग संबंधी शब्दावली का आधिक्य देखा जाता है। ऐसे भूगोल का प्रभाव अर्थ पर भी देखा जाता है, क्योंकि जिस भूभाग में जो वस्तु अधिक पैदा होती है, उस भूभाग का नाम उसी वस्तु के आधार पर पड़ जाता है और उस वस्तु से उसी भूभाग का अर्थ ग्रहण होने लगता है। जैसे कश्मीर में केसर अधिक पैदा होती है, अतः केसर से कश्मीर का अर्थ ग्रहित होता है। इसी प्रकार पांच नदियों सतलज, झेलम, रावी, ब्यास, चिनाब के कारण पंजाब सदैव बर्फ से ढका रहने के कारण हिमालय, अनेक राजाओं का भूभाग होने से राजस्थान, अनेक बौद्ध विहारों का भूखंड होने के कारण बिहार, प्रदेश आदि नाम अपने अर्थ का ग्रहण भूगोल के आधार पर ही करते हैं। साथ ही भाषाओं की सीमा निर्धारण में भी भूगोल से सहायता प्राप्त की जाती है। इन सभी कारणों से भाषा विज्ञान भूगोल का भी संबंध ज्ञात होता है। सातवां, भाषा विज्ञान और समाजशास्त्र। मानव एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी के रूप में मानव के ह्रास एवं विकास का विवरण समाजशास्त्र प्रस्तुत करता है। समाज के अध्ययन एवं उत्थान एवं पतन, उन्नति एवं अवनति, असभ्यावस्था एवं सभ्यावस्था आदि का सांगोपांग विवरण समाजशास्त्र में रहता है। भाषा भी एक सामाजिक संपत्ति है, अतः सामाजिक उत्थान पतन के साथ साथ भाषा का भी उत्थान पतन होता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे समाज सभ्यता के उत्तरोत्तर विकास के सोपानों पर चढ़ा चला जाता है, वैसे ही वैसे उनकी भाषा भी विकास की ओर अग्रसर होती है और उसकी ध्वनियों, रूपों एवं अर्थों में भी विकास में परिवर्तन के दर्शन होते हैं। इसी भाषा विकास को प्रथम प्राकृत, वैदिक संस्कृति, संस्कृत द्वितीय प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधि, खड़ी बोली आदि में यहाँ क्रमशः देखा जा सकता है। सभ्यता के साथ साथ आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास का क्रम भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। हिंदी प्रदेश में ही सामाजिक विकास का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि पहले समाज केवल चार वर्णों में ही विभाजित था और केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्ण थे जो कार्य के अनुसार ग्रहण किए जाते थे। धीरे धीरे वर्णों के वर्ग बन गए और भाषाओं में वर्ग सूचक शब्दों का प्रचार होने लगा। जैसे दत्त सूचक नाम ब्राह्मण वर्ग के द्योतक थे, राम दत्त, शिव दत्त, ब्रह्म दत्त आदि। सिंह सूचक नाम क्षत्रिय वर्ग के द्योतक होते थे, राम सिंह, शिव सिंह, प्रताप सिंह आदि। मल या लाल सूचक नाम वैश्य वर्ग के प्रधान, जैसे किरोड़ी मल, घसीटामल, श्यामलाल, प्यारेलाल आदि दास सूचक नाम शूद्र वर्ग के द्योतक होते थे, रामदास, नावादास, कृष्णदास आदि। परंतु आगे चलकर सभी वर्ग के व्यक्ति एक से एक नाम रखने लगे, तब समाज में अंतर करने के लिए जाति सूचक शब्दों को नाम के आगे लगाने की प्रथा चल पड़ी। जैसे ब्राह्मण जाति के लोग शर्मा शब्द अपने नाम के आगे लगाते थे, क्षत्रिय एवं शूद्र जाति के लोग वर्मा शब्द का प्रयोग करते थे और वैश्य जाति के लोग गुप्त शब्द का प्रयोग करते थे। इससे भी पार्थक्य करने की आवश्यकता अनुभव हो या फिर सामाजिक जन अपनी अपनी जन उपजाति के शब्दों का प्रयोग नामों के आगे करने, जैसे ब्राह्मण जाति के लोग शुक्ल, द्विवेदी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी आदि, क्षत्रिय जाति के लोग तोमर, कुशवाहा, परमार, शाक्य, चौहान आदि, वैश्य लोग अग्रवाल, वर्षणी, बारह सैनी, चतुर्षणी, चौथ सैनी, जासवाल, खंडेलवाल, महेश्वरी आदि, और शूद्र लोग भी जाटव, बाल्मीक आदि उपजाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने लगे। आगे चलकर इनमें भी अंतर करने की आवश्यकता हुई और फिर जात एवं उपजाति के सूचक शब्दों का परित्याग करके गोत्र संबंधी शब्दों का प्रयोग होने लगा, जैसे ब्राह्मणों में पराशर, वशिष्ठ, गौतम, भारद्वाज आदि, क्षत्रियों में वैश्य, मौर्य आदि, वैश्यों में गर्ग, मित्तल, कंसल, बंसल, गंगल आदि। इस प्रकार सामाजिक विकास के साथ साथ भाषा का उत्तरोत्तर विकास होता चला गया। समाजशास्त्र केवल सामाजिक विकास का ही बोध नहीं कराता, अपितु अन्य समाजों के प्रभाव से उत्पन्न सामाजिक रीति नीति, आचार विचार, बोलचाल, व्यवहार आदि का भी विवरण प्रस्तुत करता है। वह यह भी बताता है कि किस तरह एक विजयी एवं प्रगतिशील समाज की भाषा में प्रचलित शब्द दूसरी पराजित एवं परतंत्र समाज की भाषा पर अपना प्रभाव डाला करते हैं और वह समाज उन्हें किस प्रकार सहर्ष अपनाने में गौरव का अनुभव करता है। जैसे हिंदी क्षेत्र में पहले माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई, मौसा मौसी, भाई बहन आदि शब्द परिवार में बोले जाते थे, किंतु मुस्लिम समाज के संपर्क में आते ही पहले यहाँ वालिद अम्मीजान, मियाँ बीबी, बिरादर हमशीरा आदि शब्द प्रचलित हुए और फिर अंग्रेजी समाज के संपर्क में आते ही मम्मी डैडी, आंटी अंकल, पापा आदि शब्दों का प्रचार अत्यधिक मात्रा में हो गया। इस प्रकार सामाजिक विकास के साथ साथ भाषा भी किस तरह विकसित एवं परिवर्तित होती रहती है, इसका स्पष्ट ज्ञान समाजशास्त्र से ही प्राप्त होता है। यही कारण है कि समाजशास्त्र और भाषा विज्ञान का भी घनिष्ठ संबंध है। आठवां, भाषा विज्ञान और राजनीति शास्त्र। विश्व के संपूर्ण राजनीतिक हलचलों के उद्भव विकास का विवरण राजनीति शास्त्र में रहता है। राजनीतिक हलचलें केवल जनजीवन में ही परिवर्तन प्रस्तुत नहीं करते, अपितु भाषा और साहित्य में भी अद्भुत परिवर्तन प्रस्तुत किया करती है। इन राजनीतिक हलचलों के कारण है उत्तरी भारत की भाषाएं अत्यधिक परिवर्तनशील दिखाई देती हैं, क्योंकि संस्कृत से प्राकृत भाषा का विकास आभीरों के राजनीतिक प्रभाव के कारण हुआ। प्राकृतों से अपभ्रंश भाषाओं का विकास भी आभीर, शक, हूण आदि जातियों के राजनीतिक दबाव के कारण हुआ। ऐसे ही मुसलमानों के राजनीतिक प्रभाव के कारण भारतीय भाषाओं में अरबी, फारसी, तुर्की, पश्तो, ईरानी आदि भाषाओं के शब्दों का समावेश हुआ और डच, पुर्तगाली, ग्रीक एवं अंग्रेजी के राजनीतिक प्रभाव के कारण यहाँ की भाषाओं में अनेक विदेशी शब्द आ गए। आज ये आगत शब्द भारतीय भाषाओं की सहज संपत्ति से जान पड़ते हैं, किंतु इनके उद्भव और विकास का इतिहास जानने पर यही ज्ञात होता है कि विविध विदेशी साम्राज्यों की स्थापना के कारण यहाँ भी विदेशी भाषाओं में ये विदेशी शब्द आ गए। विदेशी सत्ता के प्रभाव से केवल शब्दों का ही आदान प्रदान नहीं होता, अपितु देशी भाषा की ध्वनियों, रूपों एवं अर्थों में भी पर्याप्त परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे अग्नि का अग्नि रूप, चक्र का चक्र रूप, धर्म का धम्म रूप, सिंध का हिंद रूप, सत्य का सच्च रूप आदि केवल विदेशी और आवेग ग्रीक, शक, हूण आदि जातियों की राजसत्ता के ही परिणाम है। इसके साथ ही अंग्रेजी राजसत्ता के प्रभाव से अनेक ध्वनियाँ परिवर्तित हो गईं, जैसे अंग्रेजी में अड़ के लिए यन ही ध्वनि है, अतः यहाँ शासनकर्ता जब अड़ के स्थान पर न बोलते थे तब प्रजाजन भी न कहने लगे, इसीलिए नारायण के स्थान पर नारायण, प्राण के स्थान पर प्राण, रणवीर के स्थान पर रणवीर आदि बोली जाने लगी। इस प्रकार विदेशी ध्वनियों के आगम एवं विकास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भाषा विज्ञान को राजनीति शास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। इसी कारण भाषा विज्ञान और राजनीति शास्त्र का भी घनिष्ठ संबंध है। नौ, भाषा विज्ञान और मानव विज्ञान। मानव के उद्भव विकास का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करने वाले शास्त्र को मानव विज्ञान कहते हैं। भाषा का विकास दो रूपों में हुआ है, शारीरिक विकास और सांस्कृतिक विकास। शारीरिक विकास का अध्ययन करने वाला शास्त्र शरीर विज्ञान कहलाता है, जबकि मानव विज्ञान में मानव के सांस्कृतिक विकास का सांगोपांग विवेचन होता है। मानव जाति किन किन रूपों में विकसित हुई, कैसे इस जाति का विस्तार हुआ, किस तरह इसने अपनी आरंभिक पशु अवस्था से धीरे धीरे सभ्यता की ओर कदम बढ़ाए, किस तरह मानव ने सर्वप्रथम गुफा गेह से निकलकर पशुपालन प्रारंभ किया, कैसे फिर चारागाह की खोज में मानव दलों में विभक्त होकर इधर उधर घूमने लगा, कैसे फिर कृषि कर्म की ओर प्रवृत्त हुआ, किस तरह फिर उसने गृह निर्माण की ओर ध्यान दिया, किस तरह फिर उपनिवेश बसाने आरंभ किए, किस तरह राज्य व्यवस्था की ओर इसका ध्यान गया, आदि आदि अनेक समस्याओं का समाधान मानव विज्ञान के द्वारा ही होता है। इतना ही नहीं, भाषा भी मानव के सांस्कृतिक विकास का ही अंग रही है। अतः मानव के रहन सहन, कला प्रेम, शिक्षा दीक्षा, ज्ञान विज्ञान आदि का अध्ययन करने पर उसकी भाषा के उद्भव और विकास का पता भी मानव विज्ञान के सहारे सुगमता से चल सकता है। मानव ने अपने सांस्कृतिक विकास के साथ साथ ही भाषा को भी विकसित किया है। भाषा के विकास ने मानव को सभ्यता एवं संस्कृति के चरम उत्कर्ष पर पहुंचाने में सहायता दी है। विश्व की संपूर्ण प्राचीन एवं समृद्ध भाषाएं आज इस बात के प्रमाण है कि उनमें भाषा भाषियों का सांस्कृतिक विकास का इतिहास पूर्णतया अंकित है। भारत के सांस्कृतिक विकास का पूर्ण विवरण संस्कृत भाषा अपने अंतर्गत सजाए हुए है। यूनानियों के सांस्कृतिक विकास की गाथा ग्रीक भाषा में विद्यमान है। जर्मन जाति के सांस्कृतिक उत्कर्ष की कहानी आज भी जर्मन भाषा स्पष्ट रूप से सुना रही है, और अंग्रेज जाति के सांस्कृतिक वैभव का विवरण आज अंग्रेजी भाषा अपने सहस्र मुख से कह रही है। इस प्रकार भाषाएं मानव के सांस्कृतिक विकास की राम कहानी है, और भाषाओं के माध्यम से हम प्रागैतिहासिक युग से लेकर आज तक मानव के सांस्कृतिक विकास की गाथा को भली प्रकार जान सकते हैं। इस प्रकार मानव विज्ञान न केवल भाषाओं के उद्भव विकास को जानने में सहायक होता है, अपितु ध्वनियों के विविध परिवर्तनों, शब्दों के विविध रूपांतरों आदि के विविध उत्कर्षों उपकर्षों आदि के जानने में भी सहायता प्रदान करता है, क्योंकि मानव विज्ञान के अध्ययन से ही हमें यह ज्ञात होता है कि किस तरह हमारे सांस्कृतिक विकास के साथ साथ हमारी भाषाएं समास प्रधान से क्रमशः व्यास प्रधान होती गई हैं, किस तरह उनमें भावाभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती चली गई है, कैसे वह अविधा प्रधान से उत्तरोत्तर लक्षणा प्रधान एवं व्यंजना प्रधान होती चली गई है, और किस तरह उनमें विविध अर्थों के द्योतन की क्षमता बढ़ती चली गई है। हिंदी भाषा ही प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता एवं व्यंजकता उसके उत्तरोत्तर विकास की द्योतक है, जिससे अर्थविज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत हलचल उत्पन्न हुई है। इस प्रकार मानव विज्ञान भाषा विकास, ध्वनि परिवर्तन, शब्द विकास, अर्थ विकास आदि के अध्ययन में अत्यंत उपयोगी है। मानव विज्ञान ही यह बता सकता है कि किस तरह मानव पद्य के आरंभिक क्षेत्र को छोड़कर अपने भाव और विचारों को व्यक्ति के लिए गद्य के निर्माण की ओर अग्रसर हुआ, और किस तरह अपने गद्य को तार्किकता, विवरणात्मकता, लाक्षणिकता, नादात्मकता, प्रांजलता, प्रौणता आदि गुणों से परिपूर्ण किया। इस तरह मानव विज्ञान का भी भाषा विज्ञान के साथ घनिष्ठ संबंध है। 10. भाषा विज्ञान और भौतिकी। ध्वनि, प्रकाश, ऊर्जा, अणु, परमाणु आदि का अध्ययन करने वाले विज्ञान को भौतिकी कहते हैं। भौतिकी के द्वारा ही हमें यह ज्ञात होता है कि किस तरह प्रकाश एवं ध्वनि की तरंगे ईथर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती हैं। पहले भारतीय विद्वान इस कार्य में आकाश को ही सहायक मानते थे। भौतिकी ने सिद्ध कर दिया कि आकाश तो कुछ नहीं है, परंतु ईथर एक ऐसा पदार्थ है जो प्रकाश एवं ध्वनि की तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। हम मुख से किसी शब्द का उच्चारण करते हैं और कानों से उस शब्द को सुनते हैं। मुख से निःसृत ध्वनि एवं कर्ण कुहर का संबंध कैसे स्थापित होता है, कैसे ध्वनि तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती हैं, ध्वनि की गति कितनी होती है, ध्वनि गति में कैसे वृद्धि या ह्रास होता रहता है, यंत्रों के माध्यम से कैसे हम एक स्थान पर उचित ध्वनि को लाखों हजारों मील दूर पर भी सरलता सुगमता से सुन सकते हैं, ध्वनि को सुनने में सहायता प्रदान करने वाला पदार्थ ईथर क्या है, ध्वनि के संबंध में ईथर किस प्रकार सहायता पहुंचाता है आदि आदि अनेक प्रश्नों का उत्तर भौतिकी ही प्रदान करती है। इतना ही नहीं, भौतिकी के द्वारा ही हमें उस ज्ञान सुगमता से हो सकता है कि किस तरह व्यक्ति के एक मुंह से निःसृत ध्वनि दूसरे व्यक्ति के कर्ण कुहर तक पहुँचते पहुँचते परिवर्तित हो जाती है और कैसे विकृत एवं परिवर्तित ध्वनि का उत्पादन संवहन एवं ग्रहण होता है। इतना ही नहीं, ध्वनियों के सूक्ष्माति सूक्ष्म भेदों का अध्ययन करने में भी भाषा विज्ञान को भौतिकी से बड़ी सहायता प्राप्त हुई है। आज भाषा विज्ञान की प्रयोगशालाओं में काइमोग्राफ, कृत्रिम तालु, लैरिंगोस्कोप, ऑसिलोग्राफ आदि यंत्रों के माध्यम से सभी प्रकार के उच्चरित ध्वनियों के अध्ययन की सुविधा भौतिकी आविष्कार के उपरांत ही प्राप्त हुई है। इस प्रकार ध्वनियों के यांत्रिक अध्ययन की सुविधा प्रदान करने के भौतिकी ने ध्वनि विज्ञान का अत्यंत उपकार किया है। यही कारण है कि भाषा विज्ञान और भौतिकी का भी घनिष्ठ संबंध है। 11. भाषा विज्ञान और शरीर विज्ञान। मानव शरीर की संरचना, गठन एवं विविध अवयवों की स्थिति का वैज्ञानिक अध्ययन शरीर विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। शरीर विज्ञान से यह भली प्रकार ज्ञात हो सकता है कि मानव शरीर के फेफड़ों, स्वरतंत्रियों, कंठपिटक, काकल, तालु, मूर्धा, वर्ट्स, दंतमूल, दंत, जिह्वा, जिह्वानिक, ओष्ठ आदि ध्वनि उत्पादक एवं ध्वनि उच्चारण में सहायक अवयवों की संरचना कैसी है और इनसे किस तरह क्रिया होती है, किस तरह मुख से निःसृत ध्वनि को ग्रहण करने वाले कानों की संरचना हुई है, कैसे वे ध्वनि को ग्रहण करते हैं, कैसे ध्वनि कर्ण कोणों के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुँचती है, कैसे मस्तिष्क को ध्वनि के माध्यम से पदार्थ, भाव या विचार का बोध होता है, मस्तिष्क की संरचना कैसे हुई है, मस्तिष्क कैसे कार्य करता है आदि आदि विविध शरीर संबंधी जिज्ञासाओं का समाधान शरीर विज्ञान ही करता है। शरीर विज्ञान ही ध्वनि के स्थान एवं कर्ण का सम्यक ज्ञान प्रदान करके यह बता सकता है कि किस तरह फेफड़ों से निःसृत वायु कभी अ बन जाती है, कभी ई बन जाती है, कभी उ सुनाई पड़ती है, कभी क सुनाई पड़ता है, कभी च बन जाती है, कभी ट सुनाई पड़ता है, कभी त सुनाई पड़ता है आदि आदि। शरीर विज्ञान विविध अनुनासिक, पार्श्विक, लुंठित, उत्क्षिप्त आदि ध्वनियों के उच्चारण की स्थिति का बोध सुगमता से करा सकता है। इस प्रकार विविध ध्वनियों के उत्पादक वागेंद्रीय एवं ग्राहक कर्णेन्द्रिय का सम्यक ज्ञान शरीर विज्ञान ही कराता है। यही कारण है कि शरीर विज्ञान और भाषा विज्ञान भी परस्पर संबद्ध हैं। 12. भाषा विज्ञान और पुरातत्व। शिलालेख, प्राचीन अवलेख, सिक्के, भित्तिलेख आदि पुरातन खोजों के आधार पर प्राचीन भाषा, प्राचीन लिपि आदि का वैज्ञानिक अध्ययन पुरातत्व के अंतर्गत किया जाता है। पुरातत्व विभाग विविध प्रकार के प्राचीन खंडहरों, मूर्तियों, मंदिरों, शिलाओं, पर्वत खंडों आदि का संग्रह करता है, जिससे अनेक प्रकार के प्राचीन बातों का पता बड़ी सुगमता से चल जाता है। ब्राह्मी, खरोष्ठी आदि प्राचीन लिपियों के उद्भव एवं विकास का इतिहास प्रस्तुत करने में पुरातत्व ने ही बड़ी सहायता प्रदान की है। महामहोपाध्याय गौरी शंकर हीरानंद हीराचंद ओझा ने नागरी अंक और अक्षर एवं प्राचीन लिपिमाला ग्रंथों में भाषा एवं लिपि के विकास की जो गाथा प्रस्तुत की है वह सब पुरातत्व की कृपा का फल है। विविध भाषा परिवारों के प्राचीन एवं अर्वाचीन रूपों के विकास क्रम को जानने के लिए पुरातत्व से बड़ी सहायता मिलती है। यही कारण है कि भाषा विज्ञान और पुरातत्व का भी परस्पर पर्याप्त संबंध है। 13. भाषा विज्ञान और संगीत शास्त्र। स्वरों के आरोह अवरोह के आधार पर गायन, नृत्य एवं वाद्य के अध्ययन करने वाले शास्त्र को संगीत शास्त्र कहते हैं। संगीत में गायन, नृत्य एवं वाद्य तीनों का समावेश रहता है, किंतु भाषा विज्ञान का संबंध केवल गायन विद्या से है। गायन में भाषा का प्रयोग होता है, क्योंकि गाने के स्वर भाषा के ही अंग होते हैं। इन स्वरों के माध्यम से संगीत की भाषा की ही भांति भावों के अभिव्यक्ति में सहायक होता है। प्राचीन वैदिक संस्कृत तो पूर्णतया संगीत प्रधान ही थी। वेद मंत्रों के ठीक ठीक उच्चारण के लिए तथा उनके अर्थों को सम्यक रूप से समझने के लिए पहले वेदाचार्यों ने तीन स्वरों का आविष्कार किया था, जो उद्दात, अनुदात और स्वरित कहलाते थे। इनके प्रयोग द्वारा न केवल शब्दों का उच्चारण बदल जाता था, अभी तनिक से परिवर्तित स्वर के कारण अर्थ भी बदल जाता था। इंद्रशत्रु शब्द इसका प्रमाण है। ऐसे ही संगीत के ध्वनियों के अनुसार ढालने पर भाषा के अनेक शब्दों के रूप भी बदल जाते हैं। जैसे रघुराज शब्द के रघुराई, रघुराया, रघुराऊ आदि रूपांतर संगीत के कारण ही हो जाते हैं। ऐसे ही अनेक ध्वनि परिवर्तन, बलाघात, रूप परिवर्तन एवं अर्थ परिवर्तन के कारणों को जानने के लिए भाषा विज्ञान को संगीत शास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। यही कारण है कि संगीत शास्त्र और भाषा विज्ञान भी परस्पर संबंध है। 14. भाषा विज्ञान और समीक्षा शास्त्र। साहित्य के विविध अंग एवं उपांगों की सम्यक समीक्षा करना समीक्षा शास्त्र का प्रमुख कार्य माना गया है। समीक्षा शास्त्र केवल काव्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र, पिंगल शास्त्र आदि के मान्य सिद्धांतों के आधार पर ही साहित्य या काव्य की समीक्षा नहीं करता, अपितु वह भाषा वैज्ञानिक मान्यताओं के आधार पर ही साहित्य की भाषागत समीक्षा करता है। आज साहित्य के दोनों अंगों, भाव पक्ष एवं कला पक्ष की सम्यक समीक्षा की जाती है। साहित्य के कला पक्ष के अंतर्गत भाषा का वर्गीकरण एवं विश्लेषण आता है। भाषा का वर्गीकरण विश्लेषण उसके शब्द रूपों को लेकर किया जाता है और देखा जाता है कि अमुक काव्य में तत्सम, तद्भव, देशज, द्विज आदि शब्दों में से किसकी प्रधानता है, क्या उसमें विदेशी शब्द भी अपनाए गए हैं, क्या उस काव्य की भाषा नादात्मक सौंदर्य से उत्प्रोत है, क्या उसमें प्रतीकों की भरमार है, क्या वह लाक्षणिक प्रयोगों से परिपूर्ण है, कहीं उसमें अर्थवत्ता की तो कमी नहीं है आदि आदि। भाषागत इन सभी समस्याओं का समाधान समीक्षा शास्त्र करता है और उधर भाषा का उक्त सभी विशेषताओं का अध्ययन भाषा विज्ञान के लिए भी अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि भाषा विज्ञान में भी शब्द विज्ञान के अंतर्गत शब्दों के तत्सम, तद्भव आदि रूपों का अध्ययन किया जाता है। अर्थ विज्ञान के अंतर्गत शब्दों के अर्थ परिवर्तन के कारणों को जानने के लिए उनके लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक प्रयोगों का अनुशीलन किया जाता है और ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत शब्दों की परिवर्तित ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है। पहले जब काव्य समीक्षा केवल इस प्रकार की जाती थी कि कालिदास की उपमाएं श्रेष्ठ हैं, बारहवीं में अर्थ गौरव मिलता है, नैषध काव्य के रचयिता हर्ष कवि का पदलालित्य उत्तम है और कवि माक के काव्य में उक्त तीनों गुण मिलते हैं, उस समय काव्य के कला पक्ष या भाषा के गंभीर अध्ययन की ओर ध्यान नहीं दिया जाता था। आज तो अनेक कवियों की भाषा का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन जहाँ भाषा विज्ञान और समीक्षा शास्त्र की पारस्परिक दूरी को समाप्त कर रहा है, वहाँ समीक्षा शास्त्र द्वारा भाषा के कलात्मक अध्ययन पर अधिक बल देने के कारण भाषा विज्ञान समीक्षा शास्त्र के अंतर्गत निकट आता चला जा रहा है। अतः आज काव्य की भाषा का सौंदर्य का वैज्ञानिक अध्ययन आरंभ हो जाने के कारण भाषा विज्ञान और समीक्षा शास्त्र में भी घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया है।